मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज 13 अगस्त 2015 है और मेरे सभी प्रिय श्रोताओं, आप सबका मैं एकेडमी फॉर एक्सीलेंस के इस डेली ऑडियो गाइडेंस में हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने उन 7 नौजवान साथियों का, विशेष रूप से जिन्होंने एकेडमी की फरवरी 2016 में लगने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन 7 नौजवान साथियों के नाम हैं शिवम त्रिपाठी, आप उरई उत्तर प्रदेश से हैं, सुमित कुमार सीतामढ़ी बिहार से हैं, नितिन कुमार गाजियाबाद से, शिव कुमार मथुरा से, मुकेश कुमार झा मधुबनी बिहार से, आकाश राज हजारीबाग झारखंड से और बसंत कुमार द्विवेदी बिलासपुर से। तो शिवम, सुमित, नितिन, शिव, मुकेश, आकाश और वसंत, मैं आप सभी 7ों साथियों का अपनी एकेडमी की पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरे पास बहुत से मेल आते हैं जिसमें वे जानना चाहते हैं कि एकेडमी में कैसे एडमिशन लिया जा सकता है, उसका क्या प्रोसीजर है। तो उनको मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि जब आप afeis.com पर जाएंगे तो उसमें क्लासेस का पूरा एक सेक्शन दिया हुआ है, उसे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आप कैसे क्लासेस के लिए इनरोल करा सकते हैं। मैं एक बात विशेष रूप से आपसे शेयर करना चाहूंगा, वो ये कि अभी आपको सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस 2000 रुपये है और ये आपके टोटल फीस का ही हिस्सा है, यानी कि आपकी टोटल फीस से ये बाहर होगी। एक अकाउंट नंबर आपको वहां मिलेगा, उस अकाउंट नंबर में आप किसी भी बैंक में जाकर के 2000 रुपये जमा करा देंगे तो वो आपको रसीद दे देंगे और फिर उसी जगह पर आपको एक मोबाइल नंबर मिलेगा, जो क्लासेस में जाएंगे एक मोबाइल नंबर मिलेगा, उस मोबाइल नंबर पर फिर आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि आपका ये नाम है, आप इस जगह से हैं, आपका ये मोबाइल नंबर है और आपने इस बैंक से बैंक में 2000 रुपये जमा करा दिए हैं। विद इन 24 आवर्स आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, इसका मतलब है पहुंच जाएगा, इसका मतलब है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। बाकी जो बची हुई फीस होगी वो क्लास शुरू होने से कुछ समय पहले आपको जमा करानी होती है, वो उस समय आपको बता दिया जाएगा। बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये भी भ्रम रहता है कि उनके रहने की व्यवस्था कैसे होगी, क्या होगा, तो उनको मैं सूचित करना चाहूंगा कि आपके ही बिहाफ पर एकेडमी आपके रहने का इंतजाम करा देती है। पेमेंट आपको उसका अलग से करना होता है, जो काफी रिजनेबल होता है, और एकेडमी यदि आप चाहेंगे तो वो व्यवस्था आपकी कराती है और उसके लिए जब थोड़ा सा वक्त बच जाता है क्लासेस का तो उसकी एक प्रोसेस शुरू करती है एकेडमी, आपके पास फॉर्म भेजती है जिसमें आपकी डिटेल्स भी होती हैं और आपकी च्वाइस भी पूछी जाती है कि आप एकेडमी के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले एकोमोडेशन को प्रीफर करेंगे या फिर आप सीधे सीधे अपनी ही व्यवस्था करना चाहेंगे, उस बारे में आपकी पूरी छूट होती है। और ये केवल एकेडमी अपनी तरफ से आपकी सुविधा के लिए ये काम करता है, इसमें एकेडमी कहीं भी बीच में नहीं होता। जो रियल एक्चुअल जो चार्जेस होते हैं वो आपसे ले लिए जाते हैं। तो मित्रों, ये जानकारी थी क्लासेस में एडमिशन के लिए और मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, मुझे इस बात की खुशी है कि दिन पर दिन ये जो ऑडियो गाइडेंस का परिवार है ये फैलता चला जा रहा है और निश्चित रूप से उसमें आप सब सुन रहे हैं, उसका योगदान तो है ही, लेकिन मुझे लगता है कि उससे भी बड़ा योगदान कहीं इस बात का है कि आप दूसरों को भी बता रहे हैं, सुना रहे हैं और सुनने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। मित्रों, आप सबके इस प्रयास का मैं बिल्कुल खुले तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और प्रशंसा भी करता हूं। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज पर, जो मोटिवेशन वाला स्टेज है। मुझे सच पूछिए तो इस बात की बेहद खुशी है मित्रों कि कई बार ऐसा हुआ कि मोटिवेशन वाले सेक्शन को छोटा कर दिया जाए या खत्म कर दिया जाए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बीच बीच में कभी कभी किसी स्टूडेंट की ऐसी डिमांड हो जाती है, लेकिन जब भी इस तरह के बारे में मैं भी सोचने लगता हूं तो तुरंत उसके प्रतिक्रिया स्वरूप ढेर सारे मेल आने लगते हैं और ये कहा जाने लगता है कि नहीं नहीं इसको ज्यों का त्यों रखा ही जाए। और इसलिए भी शायद इसे अब मुझे लगता है कि रखना एक अनिवार्यता भी बन गई है, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस ऑडियो गाइडेंस को सुनने वाले अब केवल सिविल सर्विस या दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट नहीं है, बल्कि वे स्टूडेंट हैं जिनका कॉम्पिटिशन से कुछ लेना देना नहीं, वो पेरेंट्स हैं जिनका इससे दूर दराज का संबंध भी नहीं है, लेकिन फिर भी मोटिवेशन वाले सेक्शन के लिए इसे सुनते हैं। और यहां तक कि बहुत से लोग तो इसलिए भी सुनते हैं कि उनको लगता है कि हमको इस ऑडियो गाइडेंस के जरिए जो दिन भर की जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं उन खबरों की जानकारी मिल जाएगी और साथ ही उसका थोड़ा सा रिव्यू भी मिल जाएगा। तो मित्रों, ये सब आप लोगों के प्रयास से ही संभव हो सका है और मैं चाहूंगा कि आप सब अपने इस प्रयास को लगातार बनाए रखें। फ्रेंड्स, मोटिवेशन वाले सेक्शन में हम लेने और देने का जो सिद्धांत था, जो प्रक्रिया थी, उसके बारे में बातें कर रहे थे और बहुत विस्तार के साथ हमने इस पर बातें की हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने इसे बहुत ध्यान से सुना होगा। और इससे भी बड़ी बात दोस्तों ये है कि धीरे धीरे आप सब इसे अपने ऊपर अप्लाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, करके देखिए, थोड़ा सा हो सकता है कि वक्त लगे। वक्त इसलिए लगे क्योंकि हम जो हमारा पुराना ढर्रा रहा है तो हमारा दिमाग, हमारा व्यक्तित्व, हमारी सोच उस पुराने ढर्रे में ढली हुई है, उसको एक आदत पड़ गई है। और आप देखते हैं कि पुरानी आदत को तोड़ पाना उतना आसान नहीं होता, जबकि एक बेहतर, उससे कई गुना ज्यादा उपयोगी नई आदत हमारे ही बगल में बैठकर हमारे देखने की प्रतीक्षा करती रहती है। हम उसे देखते भी हैं, शायद जानते भी हैं, लेकिन इस पुरानी आदत से अपना पीछा छुड़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। मित्रों, एक बार आप सब हिम्मत जुटाने की कोशिश कीजिए। जो मैंने फार्मूले बताए हैं, चाहे वो आपके पढ़ने का फार्मूला हो, चाहे किसी से बातचीत करने का फार्मूला हो, या बड़े जो पेरेंट्स सुन रहे हैं वो जाते हैं अक्सर लोगों से मिलते हैं, आप पड़ोसी के बारे में ही थोड़ी सी दूसरी जानकारी इकट्ठी कर लीजिए और आप देखेंगे कि पड़ोसी से बातचीत करने का आपका अंदाज बदल गया है और कैसे वही पड़ोसी जो पहले आपको इग्नोर कर रहा था अब आपकी प्रतीक्षा करता है, बिछा जा रहा है। मित्रों, ये जीवन का सिद्धांत है और ये बातें तो बड़ी छोटी छोटी होती हैं लेकिन बड़ी गहरी होती हैं। और छोटे की ताकत आपको मालूम है कि जो जितना महीन होगा, जो जितना छोटा होगा, वो उतनी अधिक ताकतवर, उतना अधिक ताकतवर होता, उतनी अधिक शक्ति उसमें होती है। तो मित्रों, अब मैं आता हूं उस सिद्धांत के अगले चरण पर। जो मैंने पहले आप लोगों से वायदा किया था वो था कि खुद को हल्का करें, और मुझे यकीन है कि बहुत से स्टूडेंट ने इस टॉपिक पर अपने अपने एसे भी तैयार कर लिए होंगे और यदि शॉर्टकट अपनाने का मन हो तो कुछ पॉइंट्स तैयार कर लिए होंगे, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं कि अगर मैंने ये कहा कि आप खुद को इतना हल्का करें कि लोग आपको अपने कंधे पर उठाना चाहें उठा लें और आपके कद को बढ़ा दें। मित्रों, इसका पहला सिद्धांत तो आप ये मानकर चलिए, हम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, कितने भी ज्ञानी क्यों न हो, कितने भी पैसे वाले क्यों न हो, शारीरिक और आर्थिक रूप से कितना भी धनवान और पहलवान क्यों न हो, लेकिन मित्रों, समाज और प्रकृति के इस सिद्धांत को हमेशा याद रखिएगा कि हम चाहे जितनी भी ऊंचाई पर जीवन के पहुंच जाएं, लेकिन हमारी वो ऊंचाई में हजारों लाखों प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोगों का हाथ होता है। हमें लगता है कि ये हमने किया है, मैंने किया है, उस समय तो ईगो आ जाता है, नहीं नहीं ये मेरी अचीवमेंट है, ये सब मैंने हासिल किया है, मैंने मेहनत की है। लेकिन मित्रों, हम नहीं जानते कि जो मैं जो मैं कह रहा हूं, इसके पीछे कितने लोगों ने अपना खून पसीना बहाया है, कितने लोगों ने अपने कंधों का सहारा दिया है। यह हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। मित्रों, चाहे आप प्रकृति को ले लें, आपको क्या लगता है कि प्रकृति में जो भी चीजें बनी हैं, क्या अकेले में बनी है? आपको अगर जरा से भी केमिस्ट्री की थ्योरी मालूम होगी, और होगी ही जरा से, क्या ये मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, मालूम है ही कि एक जो वस्तु है वो एलिमेंट होता है, तत्व है, उसके कुछ गुण हैं, लेकिन वही एक तत्व जब दूसरे तत्व से मिलता है तो वो यौगिक बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है, और इसके बाद उसकी क्षमताएं बिल्कुल बदल जाती हैं, वो कुछ का कुछ हो जाता है। और फिर जब ये दो तत्वों से मिलकर बना हुआ यौगिक किसी तीसरे तत्व से मिलता है तब फिर तो उसकी क्षमताएं और ज्यादा, उसकी विशेषताएं बढ़ जाती है, मतलब वो कितना एक्सपेंड कर गया। एक तत्व जब अकेला था तो उसके बहुत थोड़े से गुण थे, भौतिक गुण उसके बहुत थोड़े से थे, लेकिन जब दूसरे से मिला वो तो उसके भौतिक गुण न केवल बदले ही बल्कि एक्सपेंड भी हो गए, विस्तृत भी हो गए, और जब तीसरे तत्व से मिला तो और विस्तृत हो गए, और जब वो फिर लगातार इसी तरह से तत्वों के साथ या यौगिकों के साथ मिलता चला गया तो वो क्या से क्या बन गया। और आपको मालूम है कि इस पूरे जगत का निर्माण इसी आधार पर हुआ है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेले प्रकृति भी अपने को रच नहीं सकती थी। मित्रों, इस सिद्धांत को हमेशा याद रखिए, चाहे ये आपके सिविल सर्विस की तैयारी करने का दौर हो या फिर जीवन को आगे बढ़ाने का दौर हो, कभी भी जो भी आपके संपर्क में है, चाहे वो जीवित है, जड़ है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, धनी है, गरीब है, कोई भी हो, आपका जाना पहचाना है या अनजाना ही है, हमेशा आप उसे इस निगाह से देखें कि नहीं, हो सकता है कि मैं इससे जुड़कर अपने आप को विस्तार दे दूं, मैं अपने आप को बढ़ा दूं। और ऐसा होता ही है, उसमें से बहुतों को हम छोड़ते हैं, ऐसा नहीं कि जो हमारे संपर्क में आता है हम उससे जुड़ ही जाते हैं, लेकिन अगर आपके घर का दरवाजा खुला है तो लोग उसमें आने के लिए तैयार बैठे होंगे, या कम से कम हिम्मत तो जुटा ही लेंगे। आप कल्पना करके देखिए कि एक दरवाजा बंद है, उसके सामने से आप गुजरते हैं और वो बहुत बड़ा महल है, लेकिन अगर दरवाजा बंद है तो आप कभी ठकठकाने की, उसको खटखटाने की नहीं सोचेंगे, आप निकल जाएंगे, भले ही आपकी इच्छा हो रही हो या वो कितना भी आकर्षक और बड़ा क्यों ना हो, आप उसके सामने से निकल जाएंगे। लेकिन यदि एक छोटा सा ही घर है, झोपड़ी ही सही, लेकिन वो खुली है, तो आपकी कोशिश होगी कि यार ये झोपड़ी इस जगह पर खुली कैसी, जरा एक बार इसको झांका तो जाए, और आप उसमें झांक लेंगे। तो मित्रों, कम से कम हम अपने दिल और दिमाग के इस दरवाजे को खुला तो रखें, अगर दरवाजे को खुला नहीं रख सकते तो कम से कम उसमें एक खिड़की बना लें और फिर उस खिड़की को खुला रखें, उसे बंद न करें, ताकि दूसरे लोग आने के बारे में सोच सके। तो मित्रों, पहली बात जो आज मैं आपसे केवल थोड़ी सी शेयर करना चाहूंगा वो ये कि जब हम खुद को हल्का करने के बारे में सोचते हैं तो इसकी शुरुआत इस बात से होनी चाहिए कि हमें दूसरों की जरूरत है, और दूसरों के सहयोग के बिना हम कभी भी अपनी जिंदगी में कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, सामान्य काम भी करना मुश्किल होता है। अकेले एकांत का जीवन, गुफा में जाकर के, हिमालय में जाकर के जीना तो सबसे आसान काम है दोस्तों, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक बहुत ही सार्थक और एक सामाजिक और सकारात्मक जीवन की बात कर रहा हूं। तो जब आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि चाहे वो प्रकृति हो, चाहे मैं हूं, इन सबका विकास और इन सबका विस्तार केवल दूसरों के सहयोग से ही संभव है, तब आकर के आपके दिमाग में पहली बात ये आएगी कि तो ये दूसरों का सहयोग कैसे संभव है। दूसरों का सहयोग का मतलब ही है दूसरों के कंधों पर बैठना, दूसरों के कंधों का सहारा। तो ये दूसरे अपने कंधे हमको कब ऑफर करेंगे, क्यों देंगे, क्या जरूरत पड़ी है उनको, उनको खुद दूसरों के सहारों की जरूरत है, तो वो अपने कंधे किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों देंगे जिससे उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या आप ऐसे लोगों से सहारा ले सकते हैं, आपको ये लग सकता है कि साहब जिसको हमारी गरज होगी कि इसका, इसके बदले, इसको सहयोग करने के बदले बदले में हमें कुछ मिल जाएगा, उसी को वो अपना कंधा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। दुनिया बहुत अजूबा है, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस अजूबेपन को धीरे धीरे पहचानेंगे और लगातार अपने को हल्का करते चले जाएंगे, और हम हल्का अपने आप को करेंगे कैसे। तो मित्रों, आज मैं केवल एक इसी बात को रखकर इसको यहां समाप्त करता हूं कि अपने जीवन का यह सिद्धांत बनाइए कि हमें हमेशा दूसरों की जरूरत पड़ती है और ये दूसरों में सभी शामिल हैं। सूरज की रोशनी से लेकर के बहती हुई हवा और नदी में उछलता हुआ जल का प्रवाह और जो धरती पर पड़े हुए मिट्टी रोड़े और चट्टान, पहाड़, पेड़, चिड़िया, तितलियां, कीड़े मकोड़े, ये सारी चीजें, पूरा का पूरा चैन है प्रकृति का, ये तो आप जानते ही हैं। इसमें से अगर एक भी गायब होता है तो वह श्रृंखलता आ जाती है और फिर हम डेंजर में पड़ जाते हैं, खतरे में पड़ जाते हैं। तो मित्रों, इसी सिद्धांत को हम अपने जीवन पर लागू करते हुए पहली गांठ ये बांध लें कि मुझे दूसरों के कंधों की जरूरत है, तब फिर ऑटोमेटिक ये सोचना शुरू करेंगे आप कि फिर मुझे हल्का होना पड़ेगा ताकि लोग मुझे अपने कंधे पर उठाने को तैयार हो सके। तो मित्रों, इस पर हम लोग बात करेंगे और विस्तार के साथ बात करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूं कि यह हर एक के लिए बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। दो न्यूज कल की AIR की सबसे बड़ी खबरें हैं मित्रों। एक को तो मैं चलताऊ तरीके से आपको बता दूं कि कल संसद में थोड़ी सी बहस हुई। इतने दिनों के संसद के अवरोध के बाद, गतिरोध के बाद कल थोड़ी सी बातचीत हुई, और बातचीत क्या हुई वो हमारे सिविल सर्विस का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसमें आपने एक शब्द सुना, कार्य स्थगन प्रस्ताव, कि कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया और उसको जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उन्होंने स्वीकार किया। और इसके बाद फिर ललित गेट पर बात होनी शुरू हुई। अब ललित गेट वाटर गेट की तरह ललित गेट बन गया है और उस पर फिर जो भी हॉट डिस्कशन हुआ, बहिष्कार हुआ, उससे आ जाके अखबार आपके रंगे पड़े हैं। मित्रों, आपको ध्यान होगा कि कल के ही RDO में या शायद परसों के RDO में मैंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में चर्चा की थी, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये था कि यदि कोई भी दल, केवल विपक्ष नहीं, यदि कोई भी दल सरकार के किसी भी सिद्धांत से सहमत नहीं है, वक्तव्य से सहमत नहीं है, वो उनके द्वारा लाए गए संविधान संशोधन से सहमत नहीं है, उत्तरों से सहमत नहीं है, तो संसद की कार्य प्रणाली के तहत उसको ढेर सारे प्रस्ताव लाने के अधिकार है। मैंने आपसे ध्यान होगा कि चर्चा की थी जिसमें अविश्वास प्रस्ताव से लेकर के ढेर सारी पूरी लिस्ट है, आप किताब में देखिएगा, और एक अच्छा अवसर है कि आप उन्हें एक बार देख लें, पढ़ लें। तो आप उनको ला करके और अपनी बात रखने की कोशिश कीजिए। अगर स्पीकर ठीक होगा तो आपके प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, और स्पीकर स्वीकार भी करते हैं। ये बात ठीक है मित्रों कि जो स्पीकर होते हैं वो जो सत्तारूढ़ दल है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, उसी के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही है। जैसे जो अभी सुमित्रा महाजन जी हैं वो बीजेपी से चुनाव लड़कर के आई है, भारतीय जनता पार्टी से, और उनको स्पीकर चुना गया है। वहां भी स्पीकर का चुनाव सभी सदस्य मिलकर के करते हैं, और स्वाभाविक है कि ऐसे में जो भी पार्टी बहुमत में होगी उसका जो कैंडिडेट होगा वो स्पीकर बनेगा। इसके बाद जो डिप्टी स्पीकर और दूसरे होते हैं, पूरा पैनल होता है, उसमें दूसरी पार्टी के मेंबर्स होते हैं, वो भी सदन को चलाते हैं। ये मत सोचिएगा कि केवल स्पीकर ही सदन को चलाते हैं, है ना। आप देखेंगे फिर उपाध्यक्ष और पूरा का पूरा पैनल होता है, क्योंकि कभी कभी तो पता लगा कि 15-15 घंटे पार्लियामेंट चल रही है, लोकसभा चल रही है, राज्यसभा चल रही है, तो उसमें दूसरी पार्टी के होते हैं, लेकिन अध्यक्ष हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी का ही होता है। तो ऐसे में बड़ी आसानी से ये आरोप लगाया जाता है कि साहब ये तो सत्तारूढ़ के हित में ही सोचेंगे, जो सत्ता चाहती है, जो सरकार चाहती है कह लीजिए, उसी के अनुकूल इन प्रस्तावों को स्वीकृत अस्वीकृत करेंगे। ऐसा नहीं होता है मित्रों, ये राजनेता में एक विशेषता होती है। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ठीक है, हम पार्टी पॉलिटिक्स के तहत ही इसके अंतर्गत आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, लेकिन जब हम जीत जाते हैं और किसी कोई अलग तरह का दायित्व तो दिया जाता है, जैसे एक स्पीकर का दायित्व तो एक अलग तरीके का दायित्व तो है, उनसे तटस्थता की उम्मीद की जाती है, और वो जो अपना कार्य संचालन करते हैं उसके लिए बकायदे रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीडिंग्स बनी हुई है। ये नहीं कि वो अपने मन से कुछ भी करेंगे, स्पीकर भी होंगे तो उसका एक सिस्टम है और उस सिस्टम के तहत ही उनको काम करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में उन पर सीधे सीधे ये आरोप नहीं लगाया जा सकता, लेकिन लगाया जाता है। तो जब कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया तो उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, और देखा आपने कि कल उस पर बातचीत हुई। सवाल यह है कि यह पहले भी किया जा सकता था और संसद की कार्यवाही चालू रहती। तो मित्रों, एक समय है जब आप इन सारे प्रस्तावों के बारे में आप पढ़ लें, और मैं आपको एक क्लू देना चाहूंगा कि आप जितने भी प्रस्ताव पढ़ेंगे उनका उनकी जो संज्ञा है, उनका जो नाम है, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो उस प्रस्ताव लाने का जो कारण होगा और जो प्रभाव होगा वो उसके नाम में है। जैसे कार्य स्थगन प्रस्ताव, अब इसमें कार्य स्थगन है, मतलब जो संसद काज की जो आज की कार्यवाही होगी, जो भी होना है, वो पूरा का पूरा लिस्टेड होता है, एक एक मिनट का होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक ये काम होगा, इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक का काम होगा, पूरा टाइम टेबल फिक्स होता है उसका। तो इसका मतलब है कार्य स्थगन का मतलब कि जो आप कार्य करने वाले हैं उसे स्थगित कीजिए, और हम जो सब्जेक्ट बता रहे हैं, हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट मालूम पड़ रहा है, इस पर बातचीत होनी चाहिए। स्पीकर ने एक्सेप्ट किया। तो इस तरह से सारे के सारे नाम आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो आपको बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा, बेसिक समझ में आ जाएगा। निंदा प्रस्ताव, सरकार के किसी कार्यवाही की आपको निंदा करनी है। अविश्वास प्रस्ताव, मतलब आपको सरकार पर विश्वास ही नहीं रह गया कि भैया आप सरकार बनने लायक हैं या नहीं है, यानी कि आपको लग रहा है जैसे आप अल्पमत में आ गए हैं, तो आप अविश्वास प्रस्ताव ले आइए। तो काम रोको प्रस्ताव, रोकिए काम को। तो इस तरह से ना आपको बड़े इंटरेस्टिंग मिलेगा। तो बस मेरा यहां कहना आपको सिर्फ इतना है कि आप उनके नाम पर ध्यान दीजिए और उनके नाम को समझने की कोशिश कीजिए, फिर आप देखेंगे कि आगे जो भी कंटेंट है उन्हें आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। मित्रों, जो दूसरी जो खबर मैं जिसकी चर्चा करने जा रहा हूं, जो सबसे बड़ी खबर है और इसे पहली खबर होना चाहिए सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो है चाइना ने जो अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया है, फिर से उस मुद्रा का उसका अवमूल्यन हुआ है। और आपने न्यूज में सुना कि कैसे चीनी मुद्रा का अवमूल्यन होते ही दोबारा 1.6% किया है। फर्स्ट टाइम में शायद उसने 1.9% किया था, मतलब लगभग 3.5% अवमूल्यन हो गया, और 3.5% बहुत बड़ी बात होती है। तो अब आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के बाजार में हड़कंप मच गया और शेयर मार्केट कल बहुत धड़ाधड़ गिरे। केवल भारतीय शेयर बाजार ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के शेयर बाजार गिरे। आपने खबर ये भी पढ़ी है कि जो रुपया था हमारा डॉलर के मुकाबले, वो बहुत ज्यादा गिरा और घट करके 64.78 पैसा आ गया है, 64 रुपए मोटे तौर पर समझ लीजिए आ गया है। अदरवाइज जो 63 के रेंज में चल रहा था, 62-63, ये बहुत बड़ी गिरावट है, एक दिन की बहुत बड़ी गिरावट मानी जाती है। दोस्तों, जब हम एक रुपए के टर्म में सोचते हैं ना, एक डॉलर के टर्म में, तब तो हमको दिखाई देता है यार कुछ नहीं कुछ 70-75 पैसे का फर्क पड़ा है, लेकिन करोड़ों जब डॉलर की लैंग्वेज में आप सोचते हैं तो बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो मित्रों, ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। और एक बात मैं बता दूं कि इसको लेकर के मैंने कहा था कि अब इस पर एडिटोरियल कमेंट्स आएंगे और आर्टिकल्स भी आएंगे। इसको लेकर के नॉलेज सेंटर में दो बड़े खूबसूरत एडिटोरियल कमेंट्स डले हैं, एक इकोनॉमिक टाइम्स का है, दूसरा दैनिक भास्कर का है। मित्रों, दैनिक भास्कर के इस एडिटोरियल कमेंट को आप सिर्फ एक अखबार के टुकड़े के रूप में मत देखिए, आज आप उसे एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। और वो नजरिया ये है कि कैसे एक छोटा सा ये एडिटोरियल कमेंट, छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, आप देखिए, और अपने आप में सारी चीजों को समेटे हुए है। अब आप उसमें देखेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको पता लगेगा कि सबसे पहले तो उसने यही बताया है कि चीन ने जो अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है उसका रुपया के साथ क्या संबंध है, विश्व बाजार पर उसने उसका क्या असर पड़ रहा है, फिर उसने बताया है कि चीन ने ऐसा क्यों किया है और इसका क्या क्या असर पड़ेगा और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी दिया। मतलब एक छोटे से एडिटोरियल में उसने, सच पूछिए तो, ऐसे 5-6 सबसे वैलिड और इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर लिया और बड़ी खूबसूरती के साथ कि आश्चर्य होता है। और क्या आपको नहीं लगता कि सिविल सर्विस में यही कमाल आपको दिखाना है कि 200 शब्दों में अपनी बात कह देनी है? तो इसको आप चाहे दोस्तों तो अपने पास नमूने के रूप में रख लीजिए, क्योंकि लोगों को, स्टूडेंट्स को लगता है यार 200 शब्दों में इतना सारा पूछा गया है, 200 शब्दों में हम कैसे कहें। और मैं आपको बता रहा हूं कि दैनिक भास्कर के इस एडिटोरियल में वही कमाल किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के भी आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो इसी तरह के मिलते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स के भी एडिटोरियल आपको बहुत से ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही सघन तरीके से, जिनकी बुनावट इतनी खूबसूरत होती है, स्टेप बाय स्टेप होता है, शब्दों का कमाल होता है, भाषा बड़ी कसी हुई होती है और कंटेंट होते हैं। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई, पकड़ में आ गई, तो आधा सिविल सर्विस का रण क्षेत्र तो आपने जीत लिया। तो मित्रों, मैं आपको एक सिद्धांत बताना चाहूंगा। आप लोग दैनिक भास्कर के उस एडिटोरियल को पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे से वो चीज समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बेसिक सिद्धांत बता देता हूं इस पूरे के पूरे एडिटोरियल कमेंट का और ये जो मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है इसका, है ना। मैं भारतीय मुद्रा और डॉलर के टर्म में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वैसे मुझे मालूम है कि जो हमारे फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के जो स्टूडेंट रहे हैं उनको याद मैं दिलाना चाहता हूं। उनको जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ये जो नोट्स मैं बोल रहा हूं दोस्तों, उस तरह के रिटन नोट्स नहीं होते। पूरे के पूरे क्लास के दौरान मेरे 50 से अधिक लेक्चर मेरे होते हैं, टोटल 60 लेक्चर्स होते हैं जिसमें 50 से 55 लेक्चर्स मेरे खुद के होते हैं। और वो जितने भी लेक्चर्स होते हैं उनका एक एक प्रेजेंटेशन जैसा पेपर होता है, वो मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता हूं, वो आपके पास रहते हैं। उनको देखने के बाद आप पूरे के पूरे लेक्चर को याद कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के स्टूडेंट्स से कहना चाहूंगा कि मांग और पूर्ति के सिद्धांत को लेकर के मैंने जो इस आयात और निर्यात बताने की कोशिश की थी, जो मुद्रा के मूल्यन और अवमूल्यन की बात समझाई थी उनको, प्लीज वो पेपर निकाल लें और लेक्चर को याद करने की कोशिश करें और उसको फिर यहां अप्लाई करें। तो मैं जानता हूं कि उनको ये न्यूज बड़ी आसान सी लगी होगी, बड़ी मजेदार लगी होगी, बड़े उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, उनको ज्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी। लेकिन फिर भी बाकी स्टूडेंट्स के लिए मैं यहां बताना चाहूंगा। मैं एक छोटे से केवल उदाहरण के द्वारा आपको ये समझाना चाहता हूं, हालांकि आज बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं मित्रों, लेकिन हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। उदाहरण हम लेते हैं, मान लीजिए कि अभी तक एक डॉलर के बराबर 60 रुपए था, है ना। मैं उसको लमसम में लेकर के चल रहा हूं, आपको समझने में आसानी होगी। एक डॉलर में 60 रुपए, एक डॉलर की कीमत जो थी वो 60 रुपए थी। यानी कि अमेरिका में मान लीजिए कि कोई बैठा हुआ है, जैक्सन बैठा हुआ है, वो भारत से एक चीज खरीदता है और उसकी कीमत है भारत में 60 रुपए, राइट। ध्यान से सुनिएगा इसको, और चाहे तो आप इस ऑडियो को फिर बाद में रिपीट भी कर लीजिएगा और लिखते भी जाइएगा। मैं फिर से बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत बेसिक है, आयात निर्यात के पूरे सिद्धांत इस पर आधारित है कि जैक्सन नाम का एक व्यक्ति है जो अमेरिका में बैठा हुआ है, वो भारत में एक सुनील नाम के व्यापारी से एक डॉलर में 60 रुपए की चीज खरीदता है। उस चीज की कीमत है, मान लीजिए एक थैला है, ठीक है, खरीदता है। तो जब ये 60 रुपए की चीज वहां भेजी जाती तो बदले में एक डॉलर दे देता है, है ना। वो देखिए एक डॉलर नहीं देगा, वो रिजर्व बैंक का है, वो अलग तरीके से, हम सीधे सीधे बात कर रहे हैं, ठीक। अब क्या किया भारत ने कि अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया और उसने एक डॉलर के बराबर 65 रुपए कर दिया, राइट। एक डॉलर के बराबर 65 रुपए, याद रखिए ये मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है, वस्तु के मूल्य का अवमूल्यन नहीं हुआ। यहां क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग को, मतलब मुद्रा की कीमत घटी है, उस थैले की कीमत नहीं घटी बढ़ी है, उस थैले की कीमत अभी भी 60 रुपए है, राइट। तो अब क्या होगा कि उस थैले की कीमत तो 60 रुपए है और एक डॉलर के बदले में उसको अब जो जैक्सन नाम का जो व्यापारी अमेरिका में बैठा हुआ है उसको मिल रहे हैं 65 रुपए। तो अब उस 60 रुपए के लिए उसे एक डॉलर से थोड़ा सा कम भुगतान करना पड़ेगा क्योंकि अब उसको 60 रुपए के बराबर, तो हो सकता है कि 90 पेंस के बराबर 60 रुपए हो जाए, तो अब उसको एक डॉलर से कम में वो थैला मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब यह हुआ कि अब उसको थैला एक डॉलर से कम में मिल रहा है, तो भारत से निर्यात थैलों का खूब होने लगेगा, अमेरिका खूब थैले मंगाने लगेगा, यह तो सस्ता हो गया, राइट। इसका मतलब हुआ कि चीन ने अगर अपने युआन का अवमूल्यन कर दिया है तो चीन का निर्यात अब खूब बढ़ेगा, निर्यात खूब बढ़ेगा, राइट। आयात में इसके बिल्कुल उल्टा होगा। आयात में क्या होगा कि मान लीजिए कि पहले मैं जब एक डॉलर की चीज, अब मैं अमेरिका से जैक्सन से सुनील कोई चीज मंगा रहा है, वो थैले के बदले में वहां से बेल्ट मंगाता था मान लीजिए, तो जब उस बेल्ट की कीमत थी 60 रुपए, एक डॉलर थी, उस बेल्ट की कीमत अमेरिका तो डॉलर में निर्धारित करेगा, तो वो उसकी कीमत थी एक डॉलर। तो जब ये सुनील नामक व्यापारी वहां से एक बेल्ट मंगाता था तो उसके लिए वो एक डॉलर देता था क्योंकि 60 रुपए में एक डॉलर मिल जाते थे। अब उसी बेल्ट को मंगाने के लिए उसे देना तो एक ही डॉलर पड़ रहा है, वहां वो एक डॉलर ही भुगतान कर रहा है, लेकिन उसको एक डॉलर के लिए रुपए कितने देने पड़ रहे हैं, 65 रुपए देने पड़ रहे हैं।
तो अब क्या करेगा कि उस बेल्ट को वो वहां से नहीं मंगाएगा, क्योंकि 65 रुपए में उसे लग रहा है कि उसको मिलने, उसको यहां मार्केट में बेचने में दिक्कत होगी, यानी कि उसके लिए वही चीज जो $1 में वहां थी अब वो 65 रुपए की हो गई, तो महंगी हो गई, तो वो आयात कम कर देगा। तो यानी कि अब जो चाइना है, अब क्या होगा, अब देखिए कि मुद्रा का अवमूल्यन करने से इसका निर्यात तो बढ़ेगा चाइना का। आपको मालूम है कि चाइना के सामान से तो पूरी दुनिया का बाजार पटा पड़ा है, कहीं भी आप दुनिया में चले आए चाइनीज माल, चाइनीज बाजार, चाइनीज माल, और उसका कॉम्पीट दुनिया नहीं कर पा रही है, तो चाइना का निर्यात खूब बढ़ जाएगा। और मजेदार बात है कि आयात कम हो जाएगा। तो चाइना ने ये एक गेम खेला है और विश्व के जो इस संबंध में कानून है उनको एकदम दरकिनार करते हुए गेम खेला है, और चाइना आज इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर उसका असर है। तो मित्रों, मैंने ये बहुत बेसिक चीज आपको बताई है, अब आप ध्यान से, प्लीज मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान से पूरे विश्वास के साथ, जो लेने और देने के सिद्धांत पर हमने बात की है, समय लगा करके दैनिक भास्कर के आर्टिकल को पढ़े, यानी कि सरसरी निगाह से पढ़ा और छुट्टी पाली, क्योंकि ढेर सारे आर्टिकल्स आज मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। ढेर सारे आर्टिकल्स के चक्कर में मत पढ़िए, रहने दीजिए, कल पढ़ लीजिएगा, परसों पढ़ लीजिएगा, संडे को कुछ पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का कितना हिस्सा आपकी समझ में आ जाता है। बहुत सारे सिद्धांत इसमें आपको दिखाई देंगे। इसमें यह भी बताया गया कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और आप जानने की कोशिश उसको कीजिएगा। तो मित्रों, AIR न्यूज के बारे में आज मैं केवल इतनी ही बात करने की स्थिति में हूं। बहुत सारे और भी पॉइंट्स थे आज, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, समय की कमी के कारण मैं अब उन पर चर्चा नहीं कर पा रहा हूं, आप सब उन्हें देख लेंगे, पढ़ लेंगे, और यही टॉपिक बाद में फिर कभी आएंगे तो उस दिन हम इन पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, अब मैं आता हूं नेक्स्ट स्टेज पर, ईमेल का स्टेज है। फ्रेंड्स, दो साथियों ने अपने मोबाइल नंबर दिए हैं जो अक्टूबर की क्लास में यहां एकेडमी में आ रहे हैं, उसमें एक है प्रेम कुमार जो दिल्ली से आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली से आने वाले स्टूडेंट हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9953456668। और दूसरे स्टूडेंट है अभिषेक सिंह जो सहारनपुर से आ रहे हैं। अभिषेक सिंह का नंबर है 8755908799। ये नंबर है मित्रों, जो भी कांटेक्ट करना चाहें इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मित्रों, अब मैं आप सबके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने मेल भेजे हैं, उनमें से कुछ के मैं नाम ले रहा हूं, बाकी के नाम नहीं ले पा रहा हूं, उन सबके प्रति भी बहुत बहुत आभार, उन सबके प्रति विशेष रूप से आभार जिन्होंने आज जन्मदिन की अपनी शुभकामनाएं मुझे दी हैं। आपके इन शुभकामनाओं को मैं सब आपकी बड़ी सदिच्छाएं और आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करता हूं। बस ये चाहता हूं कि आप लोगों की ये जो दुआओं के रूप में जो मुझे शुभकामनाएं मिल रही हैं, ये मुझे शक्ति प्रदान करता रहे, और सबसे बड़ी बात है उससे भी विवेक प्रदान करता रहे, ताकि मैं इसी तरीके से और भी इससे आगे बढ़ करके आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं। आप सब का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कुछ के मैं नाम ले रहा हूं, उसमें एक राजकुमार लड्ढा जी और उनकी बेटी प्रीति लड्ढा जो फरीदाबाद से हैं, वो लगातार मेल लिखते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी और प्रीति। फिर विकेश बिसेन बालाघाट से, सुरेखा मुंबई से, मृदुला इलाहाबाद से, जसप्रीत सिंह लुधियाना से, साहिल कुमार, दिव्येश पांचाल, वरुण कुमार बेंगलुरु से, और नीतीश कुमार बेगूसराय से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के लिए इजाजत चाहता हूं, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।